Good morning to you all.
Hope you had a good night and a nice breakfast.
विश्वास करता हूँ कि आपको एक अच्छा रात और सुबह का नाश्ता मिला.
Last few days I was thinking about this particular subject about assembly, process of decision making and implementation.
पिछली रात मैं सोच रहा था कि कलीसिया में जो निर्णय लिया जाता है उसके कौन सा तरीका अपनाया जाए.
I personally have never ministered on this subject at any time.
व्यक्तिगत रूप से कहा जाएगा तो मैं अब तक ऐसा के विषय को कभी सीखा नहीं या फिर सिखाया नहीं.
Nor have I heard any ministry in the assembly on this subject.
और इस विषय के ऊपर ना मैंने किसी के द्वारा सुना है.
The subject, the topic, decision making, very often we think it pertains to the world organizations.
हम अक्सर ये सोचते हैं कि निर्णय जो लेते हैं या decision making जिसको हम कहते हैं वो केवल बाहरी दुनिया में या संस्थाएं में होते हैं.
Lot of books written about decision making in organizations.
और ऐसे संस्थाओं पर किस तरीके का निर्णय लिया जाए उसके बारे में कई पुस्तकें हमें मिलता है.
Possibly because of that, I think in the Church of God, in the assemblies, nobody bothered about this subject at all.
शायद उसी की वजह से हम इस विषय के ऊपर काफी गर्व नहीं किया या फिर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.
बट यू नो देर इज ए कॉमन फेमिलियर फ्रेज कॉल्ड द बक स्टॉप्स हियर.
द बक स्टॉप्स हियर.
या Now, that was invented by the American President Harry Truman.
Harry Truman, जो American President थे, उन्होंने ये बात को पहले बार बताया.
The final decision stops here, in other words.
एक तरीके से कहता जाएगा तो अंतिम जो निर्णय हो इधर ही बंद हो जाते हैं.
When there is any difficult decision to be made, the tendency is that pass it on to the next.
और अक्सर ऐसा होता है या तरीका ऐसा होता है अगर मुश्किल कुछ बात हमारे सामने आ गई तो आगे टाल दो.
So then Harry Truman said, no, that stops here.
नहीं ऐसा हम आगे नहीं जाएंगे वो इधर ही बंद करना है या इधर ही उसको पर निपटना है.
Over the centuries we can see the various forms of government in the world mainly based on the decision making process.
और कहीं ऐसे गवर्नमेंट को हम देखते हैं जो इस निर्णय को ऊपर आधारित वो आते हैं.
There is a autocracy or a dictatorship.
एक है ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटर या एक व्यक्ति अपना मर्जी में राज करना.
या द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद दैट वन पर्सन.
और वो एक व्यक्ति सारे निर्णय लेंगे.
देन अमंग द रोमन्स देयर वाज समथिंग नोन एज एरिस्टोक्रेसी.
और रोमी लोगों के बीच में एरिस्टोक्रेसी बोलकर एक गवर्नमेंट था.
इट्स अ ग्रुप ऑफ सेनेटर्स दे विल टेक द फाइनल डिसीजन.
उसमें क्या होता है कई लोग होगा उस सेनेट में उन लोग बोर्ड मेंबर्स जैसे और वो निर्णय लेंगे.
इवन द एम्परर्स डिसीजन मे हैव टू बी रैटिफाइड बाय दैट बॉडी.
और जो राजा है उसका निर्णय भी इन लोगों से संबंधित या ताल्लुक रखेगा.
देन वी आर वेरी फेमिलियर अबाउट डेमोक्रेसी.
और डेमोक्रेसी के बारे में तो हम जानते हैं राजनीति.
The decision being made by the people.
जो प्रजा के द्वारा निर्णय लिया जाते हैं.
Of late we can see democracy has degenerated into mobocracy.
और हम जानते हैं इस डेमोक्रेसी आज इतना नीचे गिर गई कि वो मोनोक्रेसी हो गया.
But the government God has intended for his people is known as theocracy.
लेकिन परमेश्वर जो अपना प्रजा के लिए सोच रहा है या चाहते हैं वो थियोक्रेसी है या परमेश्वर के द्वारा राज होना.
वेयर गॉड अलोन इज किंग.
और जहां केवल परमेश्वर राजा है.
रियली स्पीकिंग इफ यू सर्च द वर्ड ऑफ गॉड द ओरिजिनेटर एंड कंसमेटर ऑफ ऑल डिसीशन पर्टेनिंग टू द स्पिरिचुअल रेल्म Rest with God Himself.
और हम देखते हैं आत्मिक स्तर पर जो कुछ भी निर्णय होगा वो केवल परमेश्वर पर आधारित और परमेश्वर के अनुसार होगा.
God doesn't need to and does not consult anybody for making a decision.
और परमेश्वर निर्णय लेने के लिए किसी का राय नहीं मांगते.
There is no partnership there.
और उधर कोई किसी का सहभागिता नहीं चाहते वो.
look at the this subject I would like to approach in three different ways.
और ये विषय को तीन स्तर में मैं बताना चाहूंगा या सिखाना चाहूंगा.
I could not find any written matter from where I can make a structured presentation to you.
मैं आपके सामने क्रमों के अनुसार बताने के लिए किसी का कोई पुस्तक का सहारा मुझे नहीं मिला है.
Now the assembly and the decision making process and implementation I would like to approach in these three ways.
और इन तीन तरीके से कलीसिया के निर्णयों के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा.
First of all I want to give you my testimony.
सबसे पहले मैं मेरा गवाही देना चाहूंगा.
Second I want to see how the decision making process is revealed in the Old Testament.
और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि पुराना नियम में निर्णयों किस तरीके से या निर्णय लेने का प्रकटीकरण किस तरीके से लिया जाता है.
Lastly we look at the progressive revelation of decision making process in the local church as revealed in the Acts of the Apostles.
प्रेरितों के काम पर परमेश्वर की इच्छाओं को या फिर निर्णय लेने का क्रम का बढ़ोतरी कैसा होता है यह हम देखेंगे.
Now I was saved when I was about 12 years old.
12वां साल में मेरा उद्धार हुआ.
I was baptized when I was 14 years old.
और मेरा बपतिस्मा शायद 14 साल में हुआ.
I was very keen to get baptized.
और बपतिस्मा लेने के लिए मैं बहुत चाहते थे.
I knew all the teachings about the baptism.
और बपतिस्मा के संबंध में कही जो शिक्षाएं हैं वो मैं जानते थे.
It is the commandment of the Lord, so every child of God has to obey that.
परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानना है.
But I had more interest than that in getting baptized.
लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा इच्छा था कि मैं बपतिस्मा लूं.
Now if I tell you, you may think what a stupid teenager I was.
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके का एक मूर्ख या फिर उस तरीके का एक नौजवान था मैं.
I was very keen to take part in the breaking of bread and of the cup.
और बस मेरा इच्छा सबसे ज्यादा यह था कि मैं रोटी से भाग लूं.
No, for that you have to get baptized.
उसके लिए बपतिस्मा चाहिए.
So that is one interest that I am getting baptized.
और बपतिस्मा लेने का प्रथम उद्देश्यों में से एक वो था.
I haven't told this to anybody at that time.
ये मैंने किसी से कहा नहीं.
But that is a very important consideration in my mind.
लेकिन मेरे मन में एक ऐसा विचार थे.
You know, somehow it got into my mind that real worship means breaking of bread.
मैं इस तरीके से सोचने लगे कि असल में जो आराधना है वो रोटी तोड़ने से ही होता है.
So I thought, look, I am not worshipping.
उसके मतलब मेरा आराधना संपूर्ण नहीं है.
सो आई मस्ट गेट बैप्टाइज्ड.
इसलिए मुझे कैसा भी जो है बपतिस्मा लेना है.
देयर इज अनदर रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई गॉट बैप्टाइज्ड.
अब मेरा बपतिस्मा का और एक कारण है.
यू नो इन आवर असेंबली, वेरी लार्ज असेंबली एट दैट टाइम.
उस समय हमारा कलीसिया बहुत बड़े थे.
देयर यूज्ड टू बी अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग यूज्ड टू बी डिस्कस in something known as alochana yogam. I don't know how you translate that.
Yeah, alochana yogam matlab log sabhi milkar nirnayon ko lene ke liye sochne ke liye baithte the.
Now it will be announced, okay, sisters can go.
Bolenge
all men stay behind.
Behan ja sakte hain aur sahi bhai log wapas yahi baithe.
But you must be a baptized believer, otherwise man you cannot stay there.
और आप एक बपतिस्मा लिया हुआ भाई होना चाहिए तभी आप बैठ पाएंगे.
सो दिस वॉज वन कंसीडरेशन. नाउ वंस आई गेट बैप्टाइज्ड आई कैन सिट देयर.
उसका मतलब जब निर्णय लिया जाता है लोग जब इकट्ठे होते हैं सोचने के लिए तो उनके बीच में मैं भी बैठ सकूंगा.
एंड आई वॉज वेरी कीन टू सिट देयर.
और उधर बैठने के लिए मेरा बड़ा इच्छा था.
दैट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द चर्च इन द असेंबली.
मतलब कलीसिया में इस तरीके का निर्णय उस कलीसिया में लिया जाते थे.
नाउ फॉर अबाउट 7 इयर्स I sat through those decision making in
और उन निर्णयों के सभाओं में कम से कम 7 साल इस तरीके से मैं बैठे.
I never uttered one word there.
एक शब्द भी मैंने कुछ कहा नहीं उधर.
Because my father was sitting there.
क्योंकि मेरा पिताजी उधर बैठे थे.
So I didn't feel free that I should say anything.
इसलिए मुझे इतना आजादी महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ कहूँ.
I was listening to everything.
लेकिन मैं सब कुछ सुन रहे थे.
So now I am qualified.
अब मेरे को क्वालिफाई हो गया. मेरा अभी योग्य हो गया मैं.
So now when I was 21 years old, I came to Bombay.
जब मैं 21 साल के थे तब मैं मुंबई में आए.
I went to Fort Assembly.
मैं Fort Assembly में गया.
I started there.
उधर शुरू हुआ.
1 week, 2 week, 3 weeks.
2-3 हफ्ते आगे बढ़े.
Yeah, there is no alochana yogam here.
हाँ, यहाँ कोई इकट्ठा होकर निर्णय लेने का कोई तरीका ही नहीं है.
So then The next Sunday there was an announcement by one of the elders.
अभी अगले जो हफ्ते थे उधर हमारे प्राचीनों में से एक ने किसी ने कुछ कहा.
An important announcement.
एक बहुत ही मुख्य अनाउंसमेंट थे, मतलब नोटिस थे.
After the meeting,
मीटिंग के बाद
I went to that elder.
मैं सीधा उस प्राचीन के पास गए.
Now, don't forget, this is a young 21-year-old man coming from a village in Kerala.
21 साल का एक नौजवान गांव से आ रहे हैं. एक ऐसा व्यक्ति हूं मैं मुंबई में अभी.
I am talking to a brother who is in his 40s, a very gifted teacher of the word of God.
और लगभग 40 साल के उम्र के बहुत ही भक्त और प्रभु के वचन में बहुत ही निपुण एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ.
I straight away went to him and said, look, what you are doing is wrong.
सीधा उससे जाकर मैंने कह दिया कि आप जो कर रहे हैं सही गलत कर रहे हैं.
There was no आलोचना योग्यम. How are you announcing this thing?
ये निर्णय आपने कैसा कलीसिया को सुना दिया बिना हमें बिठाकर.
This is wrong.
ये गलत है.
So he looked at me.
वो हमें देखा.
I think he looked at me with compassion, like the Lord looked at that young man.
उस नौजवानों को प्रभु यीशु मसीह दया के साथ और प्रेम के साथ जिस तरीके से देखा, मैं विश्वास करता हूँ कि ये भाई भी मुझे इसी तरीके से देखा होगा.
But you know, one thing he appreciated that I straight away asked him instead of talking about it in the crowd.
एक चीज के ऊपर वो उसको अच्छा लगा कि विश्वासियों के बीच में ये फैलाने के जगह पर इसने सीधा मुझसे आकर बताया.
So he told me, okay, you have a problem, huh?
आपको एक समस्या है.
So what are you doing this next Friday evening? He asked me.
ये फ्राइडे आप क्या कर रहे हैं? आप फ्री है क्या? ऐसा पूछा.
I said, I don't have any particular program.
बोलते हैं कोई खास काम नहीं है मुझे.
Why don't you come home and meet me?
क्यों ना
Friday evening around 7 o'clock.
क्यों ना आप मेरा घर में एक बार आए लगभग 7 बजे.
I promptly went there.
मैं सही एकदम 7 बजे पहुंचे.
Now this brother so graciously dealt with me.
बहुत ही प्रेम और अनुग्रह के साथ मुझसे बर्ताव किया.
This stupid young man he dealt with so graciously.
बहुत ही अनुग्रह के साथ उन्होंने बात की.
For the first time he told me, look, whatever problem we have in the local assembly, what we have to do is we have to see what does the word of God say about it.
कोई भी स्थानीय कलीसिया के समस्याओं को सबसे पहले हम वचन के आधार पर देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं.
वी हैव नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल.
और निर्णय लेने के लिए या कोई भी समस्याओं का हल निकालने के लिए इस वचन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है.
देन ही टोल्ड मी सेकंड थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट द होली स्पिरिट इज योर टीचर.
और दूसरी बात हमें यह मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारा गुरु है.
ही ड्वेल्स विद इन यू.
और वे हमारे अंदर वास करते हैं.
इफ यू हैव अ प्रॉब्लम He is the one who you should ask first.
अगर आपको कोई समस्या है वो ऐसा एक व्यक्ति है जिसको पहले आप अपना प्रश्न सामने रखना चाहिए.
He asked me very, very sternly, I said, "Have you done this?"
क्या आपने ये काम पहला किया?
I said, "No."
बोला मैंने नहीं की.
I said, "I am used to what I told you in my assembly. I thought that is right. So that's why I came and told you what you are doing is wrong."
और मैंने कहा कि मेरा गांव में मेरा कलीसिया में ऐसा होते थे, ये हमारा स्वभाव है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने गलत की.
Then he told me one more thing.
तो उसने और एक बार मुझे बताया.
In future, when you feel that something is wrong, you should not say, "Oh, what you are doing is wrong." You should ask them, "Do you think, in the light of the Scripture, what you are doing is right?"
और अगली बार जब ऐसा कोई भी समस्या आपको मन में लगता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वचन के आधार पर यह बात कितना सही है. ऐसा ना हो कि आप सीधा जाकर कह दिया कि यह गलत है.
आई थॉट इट्स वेरी सेंसिबल.
और तब मुझे लगा हाँ ये बात सही है.
नेवर अगेन आई रिपीटेड दैट मिस्टेक आफ्टरवर्ड्स.
उसके बाद मेरे जीवन में कभी भी ऐसा गलती मैंने नहीं की.
बट दैट ब्रदर ग्रेशियसली स्पेंट 3 hours विद मी दैट इवनिंग.
लेकिन उस दिन बहुत ही अनुग्रह के साथ 3 घंटे मेरे साथ बिताया.
You ask whatever problem you have asked the Spirit of God and search the Scriptures.
और कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए आत्मा से पूछिए और वचन को ढूंढिए.
If you still have a problem, then you can discuss with others.
अगर आपका समस्या फिर भी आगे निकलते हैं या हल नहीं निकलते तब आप अपने प्राचीनों से पूछ।
सो ही आस्क्ड मी, नाउ इन फ्यूचर विल यू प्रैक्टिस दिस।
और मुझसे ये पूछा कि क्या भविष्य में इस तरीके से आप व्यायाम करेंगे?
आई ऑनेस्टली सेड यस आई शैल।
और मैंने सचमुच में कहा कि मैं ऐसा करूंगा।
दैट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन माई स्पिरिचुअल लाइफ।
और मेरे आत्मिक जीवन में वो बहुत ही बड़ा एक मोड़ बना।
माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चर्च ऑफ गॉड, द लोकल चर्च, एंड माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट what the scriptures teach us about elders.
और वचन के ऊपर, कलीसिया के ऊपर और प्राचीनों के बारे में भी वचन क्या कहते हैं, इन बातों में मेरा जो समझ है उसमें बहुत ही बदलाव आए।
यू नो फ्रॉम दैट वीक ऑनवर्ड्स आई यूज्ड टू स्पेंड वन इवनिंग एवरी वीक विद दैट ब्रदर।
और तब से लेकर हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते मैं इस भाई के साथ समय बिताना एक लगातार की बात हुई।
ही वॉज वेरी ग्रेशियस।
और वो बहुत ही अनुग्रह के साथ,
वॉज अ वेरी बिजी बिजनेसमैन।
बहुत ही बिजी थे, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे।
बट ही सेड आई एम हैप्पी टू डिवोट दिस मच टाइम विद यू।
और इतना समय आपको देने के लिए मैं बहुत ही आनंदित रहूंगा।
वी नेवर टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स और वेदर एनीथिंग लाइक दैट।
हम कभी मौसम के बारे में या राष्ट्र के बारे में बातें नहीं की।
यू नो आवर की वर्ड व्हाट ही मेंशन्ड वाज व्हाट इज मेंशन्ड इन मलाकाई चैप्टर 3।
और हमारा जो कुंजी जो थे वो मलाकी तीसरा अध्याय में हमें मिलेंगे।
दोस हु फियर्ड द लॉर्ड स्पोक टू वन अनदर।
जो भक्त थे, परमेश्वर से डर मानते थे, वो आपस में बातें की।
एंड द लॉर्ड took notice of that.
और परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान करता रहा।
He said, when we are together, when we speak, this is what we have to speak.
और जब हम एक साथ है भक्तों के रूप में, हमें यही बात करना है।
Speak about the Lord.
प्रभु के बारे में हम बात करें।
And that was a great blessing in my life.
और मेरे जीवन में ये बहुत ही आशीष का कारण बने।
That brother over the years taught me so many things. This is wrong. But he wouldn't say it's wrong. Let us search the scriptures and see what the word of God says about it.
बहुत कुछ उस भाई के द्वारा मुझे सीखने को मिला, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते थे कि वो गलत है, ये सही है, लेकिन वचन में क्या कहते हैं वो देखते थे।
Well, that's my testimony about the decision-making process in the church.
कलीसिया में निर्णय लेने के जो क्रम है उसके बारे में मेरा गवाही ये है।
I mentioned about the next topic is about the process of decision making as revealed in the Old Testament.
अब हम ये देखेंगे कि निर्णय जो पुराने नियम में लिया जाते थे उसके क्रम का बढ़ोतरी को हम देखेंगे।
In God's economy, God is the only person who takes the decision.
परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के मन सा ऐसा है कि निर्णय केवल उनके द्वारा होता।
And there is no partnership there.
और उधर कोई उसके साथ नहीं, कोई सहभागिता नहीं।
The sovereignty of God makes him makes it necessary that he alone does it.
और परमेश्वर का सर्वशक्ति या फिर उसके सारे अधिकार जो है उसको इसी बातों के ऊपर ये देते, जोर देते हैं।
Look at the creation. That's a very very significant incident in the life of the universe.
और जरा देखिए सृष्टि के ऊपर जो ये पूरा संसार में हम देखते हैं।
Who is the decision maker there?
और उस सृष्टि के पीछे का जो निर्णय कौन लिया?
God alone.
परमेश्वर अकेला लिया।
There is maybe consultation within the Trinity, but God alone is the decision maker.
त्रित्व का बीच में उन लोग आपस में बात जरूर किया है, लेकिन परमेश्वर केवल निर्णय लिया।
You know the flood, the whole world have been destroyed by flood, excepting that one family. That's a very important incident.
और इस संसार में हुआ एक बहुत बड़ा हादसा है कि एक परिवार को छोड़कर बाकी सभी को बाढ़ के द्वारा नाश करना।
God did not consult Noah.
परमेशर नोहा को भी ये बात नहीं पूछी।
Shall I do this?
क्या मैं ऐसा करूँ?
No.
ऐसा नहीं पूछ।
इट्स गॉड्स डिसीजन।
परमेश्वर का निर्णय।
द सॉवरेन गॉड टुक द डिसीजन एंड ही टोल्ड नोआ व्हाट ही शुड डू।
सारे अधिकार रखने वाला परमेश्वर निर्णय लिया और नोहा को बताया कि क्या करें।
वी कैन सी इन एक्ट चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 2, अ वेरी सिग्निफिकेंट न्यू डेवलपमेंट देयर।
और उत्पत्ति 2 में एक और खास बढ़ोतरी हम देख सकते हैं।
गॉड चोज टू रिवील द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ ऑफ फेथ when he called Abraham.
अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने यह चुना कि विश्वास का जीवन वो प्रकट उसके द्वारा किया।
But God did not consult Abraham for that.
लेकिन अब्राहम को उसके लिए राय नहीं पूछा।
He didn't tell him, well, this may be good, so why don't you join?
ये तरीका शायद अच्छा रहेगा, अब्राहम क्यों ना आप मेरे साथ जुड़ते।
You get out from here.
अब्राहम को कहा तुम निकलो,
यू लीव योर फैमिली योर एवरीथिंग, आई विल ब्लेस यू,
तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर आओ, मैं तुम्हें आशीष,
आई वॉन्ट यू टू लिव बाई फेथ,
मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास के साथ जिए.
कमिंग ऑन सब्सिक्वेंटली डिलीवरेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल फ्रॉम इजिप्ट, दैट्स अ वेरी बिग इंसिडेंट.
और उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा है कि मिस्रियों के उस गुलामीपन से इसराइल को छुड़ाना,
दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ नेशन ऑफ इसराइल,
और वो एक देश का शुरुआत था.
नाउ earlier Moses thought that he has a part in it, so he tried to do that.
पहले मूसा ने सोचा कि मेरा एक जरूर भाग है और मैं कुछ करूंगा.
God said no, Moses, you have no part in it.
लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम्हें ऐसा कोई भाग नहीं.
The decision about deliverance of the children of Israel, the timing, the manner, the process, everything rests with me.
कलीसिया को, सॉरी इसराइल को छुड़ाना, उसका समय, उसका तरीका, सब कुछ, उसका निर्णय मेरे पास है.
When God delivered them and made them a nation, it was God's purpose that He should be their king.
और ये परमेश्वर का मकसद था कि जब वो एक देश बनेंगे, उनका राजा परमेश्वर बनेंगे.
Theocracy was God's plan for the nation of Israel.
Theocracy या फिर परमेश्वर राजा, ये परमेश्वर की योजना था.
And God wanted to make His will known through His priests and His prophets.
और परमेश्वर का ये इच्छा था कि याचक लोग और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का प्रजा उनका इच्छाओं को जाने.
Very soon the priesthood and the worship was corrupted.
और हम जानते हैं कि याचकपन और जो जो सेवकाइयां हैं वो सब जो है मिलावट के साथ बिगड़ गए.
So God's purpose of being God in their midst, That does not fulfill.
और परमेश्वर का जो उद्देश्य था कि परमेश्वर उनका केंद्र बिंदु बने, वो पूरा नहीं हुआ.
Very soon we can see there was no king in Israel.
और हम देखते हैं कि आगे ऐसा हुआ कि राजा कोई है ही नहीं इसराइल को.
Everyone did what was right in his own sight.
और सभी अपने मन में जो सही लगा वो करने लगे.
What a state of confusion.
और ये कितना एक बिगड़ा हुआ स्थिति है.
And they said, we want a king like the Gentiles do.
और इस तरीके से वो बिगड़ गए कि वो चाहा कि अन्य जातियों के नहीं हमें भी एक राजा हो.
And there they rejected God's plan of theocracy.
और परमेश्वर का वो उद्देश्य जो परमेश्वर राजा बनते हैं वो उधर निकल गए.
When the fullness of time came,
जब समय का पूरापन हुआ,
God has his wonderful plan.
परमेश्वर का अद्भुत योजना फिर आए.
There was one who said, "Lo, I come to do your will, O God."
एक ऐसा था जिसने ये कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा करने के लिए आ रहा हूँ.
Now God was setting aside everything that was old and He was starting something new.
और परमेश्वर जो कुछ पुराना था उसको हटाकर एकदम नया एक शुरुआत कर रहे.
In Christ Jesus, God was introducing the new creation.
और प्रभु यीशु मसीह में नया सृष्टि का शुरुआत हो रहा.
His church,
उनके कलीसिया,
the body of the head Jesus Christ,
उस शरीर का सिर यीशु मसीह.
There the lordship of Jesus Christ, the headship of Jesus Christ was introduced.
और उधर पर यीशु मसीह का सिर या फिर नेतृत्व को उधर पेश किया गया.
Now in a human body, in our system, who takes all the decisions?
हमारा शरीर को जरा देखिए, सारे निर्णय लेते हैं तो कौन लेता है?
It comes from the head.
वो सिर से आते हैं.
From your brain.
आपके दिमाग से आते हैं.
That is why God said, this is the church is a body whose head is Jesus Christ alone.
इसलिए परमेश्वर ऐसा कहता है, कलीसिया शरीर है जिसका सिर यीशु मसीह है.
All decisions are made by the head.
और सारे निर्णय कलीसिया के सिर के द्वारा लिया जाते हैं.
Here now we have the infallible decision making process.
और यहां एक ऐसा तरीका हमारा सामने है जिसको और कोई तरीका जो है बदला में नहीं हो सकते.
द डिसीजन मेकर इज द लॉर्ड ऑफ द चर्च, द हेड ऑफ द बॉडी.
और प्रभु जो कलीसिया का है वो ही शरीर का सिर है.
द एजेंट हु इम्प्लीमेंट्स दैट डिसीजन इज द होली स्पिरिट.
और जिसके द्वारा होता है वो जो माध्यम है वो पवित्र आत्मा बनते हैं.
द प्रोसेस of implementation or communication of that decision by the Holy Spirit is the word of God.
और जो तरीका पवित्र आत्मा अपनाते हैं वो वचन के द्वारा.
I remember last time I mentioned here the least used resources given to the church, to every believer, is one the Holy Spirit, the other one the Word of God.
कलीसिया सबसे कम इस्तेमाल करने वाले कुछ बातों को मैंने शायद यहां पिछली कॉन्फ्रेंस में बताया था, वो ये है प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा.
God has decided that this should be the process.
परमेश्वर की इच्छा ये है कि ये प्रथम इस्तेमाल में आए.
We would like to cut the corners and go around.
लेकिन हम चाहते हैं कि उन कोनों को काट दे और हम अपना चले.
See, what I did, maybe 53 years ago was the easiest thing any believer can do.
और जो मैं कुछ 50 साल पहले करते थे वो सबसे आसान बात है जो कोई भी विश्वासी कर सकते हैं.
Yeah, go to the elder and tell him this is wrong, that is right.
कोई भी प्राचीन को जाकर सीरा कह दो ये गलत है और वो सही है.
It doesn't make any spiritual call for any spiritual exercise in you.
और ये तरीके में कोई भी आत्मिक अभ्यास की जरूरत नहीं है.
But that is not God's process.
लेकिन ये परमेश्वर का क्रम नहीं है.
We have a group of people in the Acts of the Apostles called Bereans.
Bereans बोलकर एक झुंड को हम प्रेरितों के काम में देखते हैं.
And the Holy Spirit makes it a point to say that they are known as the noble believers.
और उन विश्वासियों के बारे में बहुत उत्तम शब्द इस्तेमाल किया.
What did they do?
और उन्होंने क्या किया?
They listened to the word of God very carefully.
वो वचन को ध्यानपूर्वक सुने.
Who is the speaker?
और बातें कौन कर रहे थे या फिर भाषण कौन दे रहे थे?
Apostle Paul.
पौलुस दे रहा था.
He listened to him.
और
they listened to him. Now, what did they do after that?
इसके बाद उन्होंने क्या किया?
They went home.
वो वापस घर गए.
And they started discerning, comparing what Paul said is according to the scriptures.
और वचन के आधार पर पौलुस की बातों को परखने लगे.
In other words,
या दूसरे शब्दों में,
they said, we want to make sure that what Paul said is according to the scriptures.
और हम इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि जो पौलुस ने कहा वो वचन के आधार पर है या नहीं.
The Holy Spirit was so satisfied with that exercise.
पवित्र आत्मा इस अभ्यास से इतना तृप्त हुए.
Oh, here is a group of noble believers.
और उनके बारे में पवित्र आत्मा वचन में लिखते हैं यहां एक झुंड है जिसके बारे में मैं उत्तम कहूंगा.
What does the Holy Spirit think about our decision making process?
हमारे निर्णय लेने के तरीके के बारे में पवित्र आत्मा के लफ्जों में वो क्या कहेंगे?
We must be very, very careful about this.
हम इस बातों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना चाहिए.
We must compare with the scriptures whatever we hear that it is truly so before we come to the decision.
वचन और पवित्र आत्मा के आवाज को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ही एक निर्णय पर हमें आना चाहिए.
In the church of God,
कलीसिया में,
remember in the new creation, God speaks to the world. He disseminates and reveals His will, His purpose through the church.
कलीसिया के अंदर परमेश्वर के इच्छाओं को कलीसिया के द्वारा ही वो प्रकट करते हैं.
God in the olden times through His prophets and various means He revealed Himself partially.
हम देखते हैं परमेश्वर जब अपने बातों को प्रकट की पुराना नियम में भागी भागी में और तोड़े तोड़े कर पिताओं के या भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट की.
इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंड हिज सन एंड गेव द परफेक्ट रेवलेशन ऑफ हिमसेल्फ इन हिम.
और समय के संपूर्णता में अपने प्रिय पुत्र के द्वारा संपूर्ण प्रकटीकरण उन्होंने दिया.
नाउ ही फुलफिल्ड द विल ऑफ गॉड.
और वे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते.
ही डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल.
और जो कुछ भी वो किया प्रभु की इच्छा के अनुसार किया.
नाउ द लॉर्ड हैज गॉन सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी ऑन हाई.
अब प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के रहने और बैठे हैं.
नाउ व्हाट डिड ही डू देन.
और उधर वो क्या कर रहे हैं?
आई एम नॉट लीविंग यू एज ऑर्फन्स.
और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं.
आई विल आस्क माई फादर एंड सेंट यू ए हेल्पर.
और मैं पिता से मांग कर तुम्हें एक मदद या सहायक भेजेंगे.
द होली स्पिरिट
पवित्र आत्मा.
ही विल बी इन यू.
और वो तुम्हारे अंदर होंगे.
ही विल बी बाय योर साइड.
वो तुम्हारे साथ में होंगे.
ही विल बी अबव यू.
वो तुम्हारे ऊपर होंगे.
गार्डिंग यू.
तुम्हें संभालेंगे.
एंड ही विल टेक द ग्लोरियस थिंग्स ऑफ द सन ऑफ गॉड एंड विल मिनिस्टर अंडर योर हार्ट.
और मेरे या पुत्र के उत्तम और महिमा के भरे हुए बातों को उठाकर तुम्हारा सामने वो पेश करेगा
एंड ही विल थ्रो हिज लाइट ऑन द रिवील्ड विल ऑफ गॉड इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड मेक इट अंडरस्टैंडेबल अनटू अस
परमेश्वर के वचन के गहरी बातों पर पवित्र आत्मा के ज्योति गिराएगा ताकि मेरे लिए और आपके लिए वो प्रकट हो
टुडे गॉड हैज नो अदर मींस और मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज पर्पसेस हिज विल हिज ब्यूटी हिज ग्लोरी अदर देन द चर्च ऑफ गॉड
इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को अपनी इच्छाओं को हमारे दिल तक पहुंचाने का और कोई तरीका या माध्यम बने में नहीं है
वी मस्ट मेक सीरियस नोट ऑफ दिस आस्पेक्ट
और ये इस तर्क के बारे में हमें बहुत ही गंभीरता से मालूम होना चाहिए
व्हेन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज हियर ही वाज मैनिफेस्टिंग गॉड्स पर्पस एंड विल
जब प्रभु यीशु मसीह यहां थे तब पिता की इच्छा को वो बता रहा था
टुडे दैट प्लेस इज टेकन बाय द चर्च ऑफ गॉड
अब वो जगह कलीसिया के हाथ में
डोंट ट्रीट द लोकल चर्च सो लाइटली बिलवड
स्थानीय कलीसिया को हल्का कभी ना समझना
इट्स गॉट सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पर्पस ऑफ गॉड
परमेश्वर के निर्णयों में परमेश्वर की योजनाओं में स्थानीय कलीसिया का भाग बहुत ही उत्तम है
एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ the progressive revelation of God of decision making coming in the Acts of the Apostles
isliye preridon ke kaam par kalishya ke andar hone wala nirnayon ka kram aur uske badhotri bahut hi gambhir taur se hame samajhna hai
first of all I want to turn your attention to Acts chapter 4 verse 37
sabse pehle preridon ke kaam chautha adhyay uske 37 के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूंगा 37
यस बट दैट इज द लास्ट वर्स
4 के 37 आखिरी वर्स उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पावों पर रख दिए
नाउ हु आर द एक्टर्स हियर
अब यहां कौन कौन है
देयर इज अ ब्रदर
एक भाई है
called Barnabas and he sold his land
wo apna jagah bheje aur
and then he brings it and where gives to whom
aur kisko wo dete hain us paisa
he didn't call a committee let's form a committee a trust and I will hand over that money to them
unhone nahi ye bola ki ek committee shuru karo aur usko main mera paisa dunga aisa nahi kaha
he put it at the feet of the apostles
prerdon ke paavon par rakh diya
the decision making process at that time was only the apostles
aur yahan jo nirnay lene ka jo jo kaary karte the wo keval prerit log the
now let's move on to chapter 6
ab chhatwa adhyay ki aur zara dekhiye
verse 2 and 3
uske 2 aur 3
here is a problem in the early church
ab yahan ek samasya bhi hai
there was a genuine problem coming up of lack of unity in the church at that time
aur ekta ka kami bhi udhar hame mehsoos hote hain
then the 12 that the apostles summoned the multitude of the disciples and said it is not desirable that we should leave the word of god and serve tables
tab un 12 ne chelon ki mandali ko apne paas bula kar kaha ye theek nahi ki hum parmeshwar ka vajan chhod kar खिलाने पिलाने की सेवा में रहे
Therefore, seek out from you 7 men.
इसलिए है भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को
of good reputation, full of Holy Spirit and wisdom.
जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो सुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें
Now this progressive revelation comes. First it was only the apostles. Now apostles and disciples.
और यहां देखते हैं सब पहले निर्णय केवल प्रेरितों के ऊपर थे उसके बाद प्रेरितों और शिष्यों के ऊपर आ गया
Now let's move on to chapter 15.
अब उसके 15वां अध्याय जरा देखिए
वर्स 2
उसके दूसरा वचन
Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question
jab paulos aur barnabas ka unse bahut jhagda aur vaad vivad hua to yeh tehraya gaya ki paulos aur barnabas aur unme se kuch vyakti is baat ke vishay mein preridon aur prajinon ke paas jerusalem ko jaye
now here what do we see a new group
अब यहाँ एक नया झुंड को हम ध्यान देते हैं.
Apostles and elders.
प्रेरित लोग और प्राचीनों.
It's a very important decision making session there.
अब देखिए यहाँ निर्णय लेने के संबंध में एक बढ़ोतरी देखते हैं.
I am trying to bring before you the transition of church leadership and decision making.
मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ कि कलीसिया के निर्णयों में जो बदलावट या जो 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 अलग अलग बातें होते हैं वो हमें ध्यान देना.
चैप्टर 4 इट वॉज ओनली द अपोसल्स.
चौथा अध्याय में केवल प्रेरित.
चैप्टर 6 अपोसल्स एंड द डिसाइपल्स.
छठवां अध्याय में प्रेरित और शिष्य.
चैप्टर 15 अपोसल्स एंड एल्डर्स.
और अब 15वां अध्याय में प्रेरित और प्राचीनों.
नाउ लेट्स टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 21.
अब प्रेरितों के काम उसके 21वां अध्याय देखते हैं.
वर्स 18
उसके 18वां वचन.
ऑन द फॉलोइंग डे Paul went in with us to James, and all the elders were present. When he had greeted them, he told in detail those things which God had done among the Gentiles through his ministry.
दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे. तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए.
Paul is meeting the elders of the church in Jerusalem.
Jerusalem ke kalishya ke vishwasiyon se elders prajinon se wo mil rahe hain.
Possibly there must have been some of the apostles there at that time.
Ho sakta hai kuch prerit log bhi the.
Many of them must have gone to different other places.
Aur unme se kahi log dur dur deshon mein gaye honge.
But what does Paul do?
Lekin Paulus kya kar raha hai?
Paul doesn't do anything on his own.
पौलुस अपने आप में कुछ नहीं कर रहे हैं.
गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट ही डस.
पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हुए वो इन बातों को करते हैं.
एंड ही मीट्स द एल्डर्स ऑफ द लोकल चर्च इन जेरूसलम.
और स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों को वो मिलते हैं.
सो द अपोसल्स ऑल्सो आर ड्रॉप्ड आउट.
और अब देखो प्रेरितों को भी हम नहीं देखते हैं, केवल प्राचीनों को देखते हैं.
नाउ इट्स ओनली द अपोसल्स, नाउ ओनली द एल्डर्स.
अब प्राचीनों को केवल हम देखते हैं.
यू नो वी कैन सी दिस अगेन इन एक्ट चैप्टर 20.
यही बात को दोबारा हम प्रेरित के 20वां अध्याय में देखते हैं.
पॉल बाय गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड ही वाज ऑन हिज वे टू जेरूसलम.
जेरूसलम की ओर आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करकर पौलुस जा रहे थे.
एंड ही न्यू इन द स्पिरिट दैट ही इज नॉट गोइंग टू मीट The Ephesian believers again.
और आत्मा में पौलुस जानते थे कि अब एफेसी के विश्वासियों को वो अभी दोबारा नहीं मुलाकात करेंगे.
He lived there for long period of time and taught the whole counsel of God.
और परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को समझाने के लिए उनके साथ कहीं समय बिताने लगे.
Now he wants to communicate something very important to them.
अब उनको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातों को पौलुस वार्तालाप करना चाहते थे.
Warn them about the perils lying ahead.
आने वाले खतराओं के बारे में उन्हें बताया.
Then what did he do?
और उन्होंने क्या किया?
He didn't call an आलोचना योग for that.
हाँ, जैसे हमने पहले बोला, एक आलोचना योग मतलब लोगों को इकट्ठा कर सोचने नहीं लगे.
He called the elders of the church in Ephesus.
वो एफेसियन के कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए.
I told you the Holy Spirit never makes a mistake.
मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करते.
Paul was so controlled and guided by the Spirit of God that he does the right thing here.
पवित्र आत्मा से पौलुस इतने नियंत्रित थे कि वो एकदम उत्तम और सही बात को करते हैं.
Then Paul went on.
और पौलुस आगे बढ़े.
Finally he ended up in the Roman jail.
और रोमी के कैद में वो आ गए.
Then he wanted to write a letter to this same church Ephesus.
अब एफेसस के इन विश्वासियों को एक चिट्ठी लिखना चाहते थे.
There in chapter 4 if you read, I think we are going to have a session on that later on. And there he writes, hey, I want to tell you something new.
एफेसी 4 में वो कुछ नए बात बताते हैं.
The risen Lord, he is the head of the body.
कलीसिया के सिर है यीशु मसीह जो जी उठा.
He has not left you as orphans.
और आपको वो अनाथ नहीं छोड़े.
He has given you some gift.
और वो तुम्हें कुछ वरदानों को दिया.
To every church, the risen Lord has given his gift.
जी उठा यीशु मसीह हर कलीसिया को कुछ वरदानों को दिया है.
You must never forget. It is the Lord who is building the church.
और आपको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह या फिर परमेश्वर है जो कलीसिया को बनाते हैं.
It is his body whose head is himself.
और उसके शरीर है जिसका सिर वो खुद है.
द इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ दिस ऑफ द लॉर्ड एंड हिज चर्च.
और ये एकता को कभी हम अलग नहीं कर पाएंगे.
एंड द लॉर्ड टेक्स केयर ऑफ एवरी नीड ऑफ द चर्च.
और उस शरीर उस कलीसिया के हर जरूरतों को यीशु मसीह या फिर प्रभु.
एंड वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ दैट इज ही गिव्स गिफ्ट्स टू द चर्च.
और उसमें से एक कार्य यह है कि वो वरदानों को देते हैं.
इट इज नॉट दैट ही गिव्स द गिफ्ट ऑफ ऑरेटरी टू वन पर्सन.
ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार देते हैं.
द गिफ्ट ऑफ ग्रेट नॉलेज टू अनदर पर्सन.
एक व्यक्ति को ज्ञान का दे दिया.
इट्स नॉट दैट.
ऐसा नहीं है.
ही गिव्स मेन.
वो व्यक्तियों को वरदानों के रूप में देते हैं.
चोसन बाय द होली स्पिरिट ही गिव्स देम एज गिफ्ट टू द चर्च.
पवित्र आत्मा के द्वारा चुना हुआ लोगों को व्यक्तियों को वो देते हैं.
सम एज एल्डर्स.
किसी को कुछ को प्रेरित.
ओवरसीयर्स पास्टर्स एल्डर्स इट्स ऑल द सेम वर्ड.
ये प्राचीन अध्यक्ष बुजुर्ग ये सब एक ही शब्द है.
दैट इज द गिफ्ट of the risen Lord to the local church.
जी उठा यीशु मसीह कलीसिया को देने वाला वरदान है वो.
Elders, evangelists,
सुसमाचारक
and the prophets.
भविष्यवक्ता.
But that is one of the foundation gifts.
लेकिन भविष्यवक्ता और प्रेरित केवल नींव के वरदान हैं.
Prophets and elders, evangelists and teachers. That's what is used there.
उधर जो शब्दों इस्तेमाल किया है सुसमाचारक रखवाले और प्राचीन.
एंड गॉड टेक्स द डिसीजन. द लॉर्ड हिमसेल्फ टेक्स द डिसीजन.
और सारे निर्णय प्रभु खुद लेते हैं.
ही कम्युनिकेट्स थ्रू हिज चोसन मैन हिज गिफ्ट टू द चर्च.
अपने चुने हुए वरदान के जो व्यक्तियां हैं उनके द्वारा वो निर्णयों को लेते हैं.
व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस.
और इसके उद्देश्य क्या है.
फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स.
और इन पवित्र लोगों को शुद्ध बनाना ये उद्देश्य है.
फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री.
ताकि सेवकाई बढ़े.
फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट.
ताकि कलीसिया के आत्मिक उन्नति हो.
द हेड इज ही कंसर्न्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स.
क्या सिर इन बातों में ख्याल रखते हैं.
ही डस नॉट लीव वैक्यूम अवॉइड देयर.
कहीं भी एक गड्ढा या फिर एक अलग का जगह नहीं छोड़ते.
ही हैज टेकन केयर ऑफ एवरी नीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस.
कलीसिया के हर बात और खास करके नियंत्रण निर्णय के बातों पर भी ध्यान देता
है. एंड ही हैज गिवन दिस गिफ्ट्स टू द लोकल चर्च.
और ये वरदान कलीसिया को उन्होंने दिया.
नाउ रिमेंबर दिस इज गॉड्स चोसन वे ऑफ डिसीजन मेकिंग.
ये परमेश्वर का निर्णय लेने का चुना हुआ तरीका है.
नंबर वन.
सबसे पहले
द लॉर्ड हिमसेल्फ इज द डिसीजन मेकर.
प्रभु खुद निर्णय लेता है.
Never try to usurp that from him.
और उस भाग को खुद में मत लेना.
It is his church.
वो उनका कलीसिया है.
He loved and gave himself for the church.
वो कलीसिया से प्रेम की और अपने आप को दे दिया.
None of us has done that.
और हमें से कोई भी ऐसा नहीं की.
He did that.
उन्होंने की.
So he loves the church.
इसलिए वो कलीसिया से प्रेम करते हैं.
His own church.
अपना खुद का कलीसिया.
I am building this church.
मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा.
He didn't ask for any partnership there.
किसी को पार्टनर नहीं बनाया.
He has not asked for anybody's help.
वो किसी का मदद नहीं मांगा.
I am doing that myself.
मैं मेरा कलीसिया को.
That is not delegated to anybody else.
ये बात किसी को नहीं सौंपा.
Jesus Christ himself is a cornerstone.
वो खुद कोने का सिरा है.
He is the builder.
वो ही बनाने वाले हैं.
Now, in when it comes to the local church, in 1 Corinthians chapter 3, Lord in His mercy uses some fellow laborers with Him.
और पहला कुरिन्थी 3 में जैसे हम देखते हैं प्रभु अपने दया में कुछ सहभाग लोगों को देते हैं.
He alone, singularly, is the shepherd of the church.
वो खुद अकेला में चरवाहा का काम करते हैं.
But His gifts, chosen men, elders, He calls them what? Under shepherds.
और कुछ elders या प्राचीनों को वो बुलाते हैं और अपने छोटे चरवाहे के रूप में स्वीकार करते हैं.
Never forget that.
कभी ऐसा ना भूले.
If I am sure there are many elders of local churches here.
मुझे उम्मीद है कि यहां भी कई प्राचीन लोग होंगे.
Don't try to say, oh, I am the shepherd of this church.
कभी ऐसा ना कहे कि स्थानीय कलीसिया का
कलीसिया. We are not.
मैं हूं.
We are not.
हम नहीं हैं.
He is the chief shepherd.
वो है मुख्य चरवाहा.
We are under shepherds under him.
हम उनके नीचे के उनके स्तर के नीचे हैं.
Fellow laborers with Lord Jesus Christ.
सहकर्मी हैं साथ में काम करने वाले.
The Lord has not given us the responsibility of like what Uzzah did of guarding the ark of God.
जैसा उज़ा ने उस मिलाप के तंबू के जो संदूक को पकड़ने का काम हमारा नहीं है.
Sometimes we think, oh, if I don't do this, the ark will fall down.
हम कभी सोचेंगे कि संदूक को अगर मैं नहीं संभालेंगे तो वो गिर जाएंगे.
That same ark was in the Philistine country for 5 months. What happened?
5 महीने जब फिलिस्ती लोगों के हाथ में वो संदूक था तो तब क्या हुआ?
Who protected that ark?
कौन उस संदूक को संभाला?
The Lord of the ark.
प्रभु जो संदूक का प्रभु है.
So the Lord of the ark can protect this ark from falling from that cart.
इसलिए उस गाड़ी से संदूक को ना गिराते हुए प्रभु संभाल सकते हैं.
What Uzzah should have done is,
उसा को क्या करना था?
Search the scriptures.
वचन को ढूंढना था.
Here we have a decision to be made.
यहाँ एक निर्णय लेने थे.
To take this ark from here to Jerusalem.
संदूक को उठाकर यरूशलेम तक पहुंचाना.
How do we do it?
अब ये कैसे करेंगे?
The last time the ark was transported, it was on a cart.
पिछली बार जब संदूक को उठा के लेके गए तो एक बैलगाड़ी के ऊपर.
That was done by the Philistines.
लेकिन फिलिस्ती लोग ने वो किया.
So God would tolerate that.
वो जो है प्रभु ने माफ कर दी.
But God will not tolerate David or Uzzah transporting the ark of God on a new cart.
लेकिन दाऊद या उसा जब वो ही काम जो फिलिस्ती ने किया ये प्रभु माफ नहीं करेंगे.
You have to search the scriptures.
ये हमें वचन को ढूंढने में मजबूर करते हैं.
That's what Uzzah should have done.
उसा को यही काम करना था.
That's what David should have done.
यही काम तो दाऊद को करना था.
How do we transport the ark of God?
आज हम इस संदूक को कैसे लेके चलते हैं?
So when the decision making went wrong,
जब ये निर्णय गलत हुआ,
then they became very important in their own sight.
तब वो ही अपने आप में बड़े बड़े लोग समझने लगे.
Oh, the responsibility of protecting the ark is mine.
अब संदूक को संभालने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है.
Far from it.
इससे हमें दूर रहना चाहिए.
The Lord says, every decision concerning the church of God is mine.
हर निर्णय जो कलीसिया में लिया जाता है वो मेरा है.
I am the Lord of the church.
मैं कलीसिया का प्रभु हूं.
Decision making is mine.
निर्णय मेरा है.
And I entrust the implementation with my gifts, my chosen men in the church of God.
और उसको काम पे जारी रखना या काम को लगाना मैं मेरे वरदानों के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा करता हूँ.
There is no mention about an आलोचना योगम there, isn't?
उधर कोई भीड़ इकट्ठा होकर कोई निर्णय नहीं होते.
That is not a scriptural pattern.
ये वचन का तरीका नहीं है.
No, I was so misguided by that for 21 years.
अब एक लगभग 21 साल के लिए ये गलतफहमी मेरे अंदर थी.
By the grace of God, the Lord sent His chosen men to correct me, to help me.
प्रभु के अनुग्रह से उनके चुने हुए लोगों के द्वारा मुझे ये सबक सिखाया.
Never, never be tempted to usurp the authority of God.
परमेश्वर का उस उत्तम अधिकार को हम कभी ना छीने.
He is the Lord of the church.
हम जानना चाहिए कि प्रभु कलीसिया के प्रभु है.
Decision making belongs to him and him alone.
निर्णय केवल उनका है.
And the process is through the agency of the Holy Spirit.
तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा है.
And the implementation is through God's gift, the elders.
और उन प्राचीन जो परमेश्वर के दान है वरदान है उनके द्वारा.
इन द लोकल चर्च,
स्थानीय कलीसिया.
अदरवाइज पॉल वुड नॉट हैव टेकन द ट्रबल टू कॉल द एल्डर्स ऑफ द एफेशियन असेंबली टू हिम.
अगर ऐसा नहीं होता तो पौलोस एफेसी के प्राचीनों को बुलाने का कष्ट नहीं लेते.
माई टाइम इज अप.
मेरा समय खत्म हुआ.
आई dwelt upon three aspects.
तीन बातों के ऊपर हमने ध्यान दी.
फर्स्ट ऑफ ऑल,
सबसे पहले,
गॉड हिमसेल्फ इज द डिसीजन मेकर.
परमेश्वर खुद निर्णय लेने वाले हैं.
द लॉर्ड डजंट अब्डिकेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ये जिम्मेवारी किसी को वो नहीं सौंपते.
एंड द होली स्पिरिट इज द एजेंट थ्रू हुम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड ऑफ द चर्च ऑपरेट्स टूडे.
और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में प्रभु अपने निर्णयों को आगे लाते हैं.
एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज एंड इम्प्लीमेंटेशन इज थ्रू the elders of the local church.
और इन प्राचीनों के द्वारा परमेश्वर अपने निर्णयों को काम पे लाते हैं.
And the word of God is a standard, the measurement for that.
और इन सभी बातों को नापने का जो दंड है या नापने का जो छड़ी है वो वचन है.
The Lord says, search the scriptures and they speak of me.
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन को ढूंढो और वो मेरे बारे में गवाही देते हैं.
That has not changed.
और ये अब तक ना बदला है. बदला so, बदला नहीं बदला.
I want to complete with these three aspects.
इन तीन बातों को सामने रखते हुए मैं खत्म करना चाहूंगा.
Decision making process and the implementation.
ये निर्णयों का क्रम का आधार पर.
In a local church, these three things are important.
ये तीन बातें मुख्य हैं.
Blessed are we if we abide by what God has revealed in His word.
हम आशीषित रहेंगे कि अगर हम परमेश्वर का प्रकट किया हुआ तरीकाओं को अपनाएं.
Don't go to any other field for gleaning.
और कोई खेत में इस दानों को उठाने के लिए ना जाए.
Don't look at the environment around like the children of Israel did. They have kings. We also want a king.
इस्राएली जाति के ना ही हम भी गलती ना करें कि अन्य जातियों के ना ही हमें भी राजा चाहिए.
Go to the right source.
सही और उत्तम स्रोत के पास जाए.
You will get the answer.
हमें उत्तर मिलेंगे.
You will have the blessing.
हमें आशीष मिलेगी.